क्रमांक 301 जीव राग और ज्ञान की एकता में उलझ गया है। निज अस्तित्व को पकड़े तो उलझन निकल जाए। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा अस्तित्व लक्ष्य में आना चाहिए। ज्ञायक के अतिरिक्त अन्य सब पर है, ऐसा उसमें आ जाता है। क्रमांक 302 ज्ञानी को संसार का कुछ नहीं चाहिए, वे संसार से भयभीत है। वे संसार से विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वभाव में सुबट है, अंतर से निर्भय है, किसी से डरते नहीं हैं, किसी उपसर्ग का भय नहीं है, मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसे निर्भय हैं। विभाव को तो काले नाग की भांति छोड़ दिया है। क्रमांक 303 सम्यक दृष्टि को अखंड तत्व का आश्रय है। अखंड पर से दृष्टि छूट जाए तो साधक बना ही न रहे। दृष्टि तो अंतर में है, चारित्र में अपूर्णता है। वह बाहर खड़ा दिखाई दे, परंतु दृष्टि तो स्व में ही है। क्रमांक 304 भगवान की प्रतिमा देखकर ऐसा लगे कि आहा, भगवान कैसे स्थिर हो गए हैं, कैसे समा गए हैं, चैतन्य का प्रतिबिंब है। तू ऐसा ही है, जैसे भगवान पवित्र हैं, वैसा ही तू पवित्र है। निष्क्रिय है, निर्विकल्प है, चैतन्य के सामने सब कुछ पानी भरता है। क्रमांक 305 तू अपने को देख, जैसा तू है वैसा ही तू प्रकट होगा। तू महान देवाधिदेव है, उसकी प्रकटता के लिए उग्र पुरुषार्थ एवं सूक्ष्म उपयोग कर। क्रमांक 306 रुचि का पोषण और तत्व का मंथन चैतन्य के साथ एकाकार हो जाए तो कार्य होता ही है। अनादि के अभ्यास से विभाव में ही प्रेम लगा है, उसे छोड़। जिसे आत्मा रुचता है उसे दूसरा नहीं रुचता, और उससे आत्मा गुप्त अप्राप्य नहीं रहता। जागता जीव विद्यमान है, वह कहाँ जाएगा, अवश्य प्राप्त होगा ही। क्रमांक 307 तत्व का उपदेश असीधारा समान है, तदनुसार परिणमित होने पर मोह भाग जाता है। क्रमांक 308 द्रव्य गुण पर्याय में सारे ब्रह्मांड का तत्व आ जाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों में रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है। पर्याय द्रव्य को पहुंचती है, द्रव्य पर्याय को पहुंचता है। ऐसी ऐसी सूक्ष्मता को यथार्थ रूप से लक्ष्य में लेने पर मोह कहाँ खड़ा रहेगा। क्रमांक 309 बकरियों की टोली में रहने वाला पराक्रमी सिंह का बच्चा अपने को बकरी का बच्चा मान ले, परंतु सिंह को देखने पर और उसकी गर्जना सुनने पर मैं तो इस जैसा सिंह हूँ ऐसा समझ जाता है और सिंह रूप से पराक्रम प्रकट करता है। उसी प्रकार पर और विभाव के बीच रहने वाले इस जीव ने अपने को पर एवं विभाव रूप मान लिया है, परंतु जीव का मूल स्वरूप बतलाने वाली गुरु की वाणी सुनने पर वह जाग उठता है। मैं तो ज्ञायक हूँ ऐसा समझ जाता है और ज्ञायक रूप परिणमित हो जाता है। क्रमांक 310 चैतन्य लोक अद्भुत है, उसमें रुद्धि की न्यूनता नहीं है। रमणीयता से भरे हुए इस चैतन्य लोक में से बाहर आना नहीं सुहाता। ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि जीव एक ही समय में इस निज वृद्धि को तथा अन्य सबको जान ले। वह अपने क्षेत्र में निवास करता हुआ जानता है, श्रम पड़े बिना, खेद हुए बिना जानता है, अंतर में रहकर सब जान लेता है, बाहर झांकने नहीं जाना पड़ता। क्रमांक 311। वस्तु तो अनादि अनंत है, जो पलटता नहीं है, बदलता नहीं है, उस पर दृष्टि करे, उसका ध्यान करे, वह अपनी विभूति का अनुभव करता है। बाह्य के अर्थात विभाव के आनंद सुखाभास के साथ बाहर की किसी वस्तु के साथ उसका मेल नहीं है। जो जानता है उसे अनुभव में आता है, उसे किसी की उपमा लागू नहीं होती। क्रमांक 312। अनादिकाल से एकत्व परिणमन में सब एक मेक हो रहा है, उसमें से मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार भिन्न होना है। गौसलिया की दृष्टांत की भांति जीव विभाव में मिल गया है। जिस प्रकार गौसलिया ने अपनी कलाई में बंधा हुआ डोरा देखकर अपने को भिन्न पहचान लिया, उसी प्रकार ज्ञान डोरा की ओर यथार्थ लक्ष्य करके मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार अपने को भिन्न पहचान लेना है। क्रमांक 313। मार्ग में चलते हुए यदि कोई सज्जन साथी हो तो मार्ग सरलता से कटता है, पंच परमेष्ठी सर्वोत्कृष्ट साथी है। इस काल में हमें गुरुदेव उत्तम साथी मिले हैं। साथी भले हो परंतु मार्ग पर चलकर ध्येय तक पहुंचना तो अपने को ही है। क्रमांक 314। खंड खंड रूप ज्ञान का उपयोग भी परवशता है। परवश सो दुखी और स्ववश सो सुखी है। शुद्ध शाश्वत चैतन्य तत्व की आश्रय रूप स्ववशता से शाश्वत सुख प्रकट होता है। क्रमांक 315। द्रव्य दृष्टि शुद्ध अंत तत्व का ही अवलंबन करती है। निर्मल पर्याय भी बहि तत्व है, उसका अवलंबन द्रव्य दृष्टि में नहीं है। क्रमांक 316। अपनी महिमा ही अपने को तारती है। बाहरी भक्ति महिमा से नहीं परंतु चैतन्य की परिणति में चैतन्य की निज महिमा से तरा जाता है। चैतन्य की महिमावंत को भगवान की सच्ची महिमा होती है, अथवा भगवान की महिमा समझना वह निज चैतन्य महिमा को समझने में निमित्त होता है। क्रमांक 317। मुनिराज वंदना प्रतिक्रमणादि में लाचारी से युक्त होते हैं। केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए युक्त होना पड़ता है। भूमिका अनुसार वह सब आता है, परंतु स्वभाव से विरुद्ध होने के कारण उपाधि रूप लगता है। स्वभाव निष्क्रिय है, उसमें से मुनिराज को बाहर आना नहीं सुहाता। जिसे जो कार्य न रुचे वह कार्य उसे भार रूप लगता है। क्रमांक 318। जीव अपनी लगन से ज्ञायक परिणति को प्राप्त करता है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं विभाव भाव से भिन्न हूँ, किसी भी पर्याय में अटकने वाला मैं नहीं हूँ, मैं अगाध गुणों से भरा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव हूँ। इस तरह अनेक प्रकार के विचार सम्यक प्रतीति की लगन वाले आत्मार्थी को आते हैं, परंतु उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाली सम्यक प्रतीति का तो एक ही प्रकार होता है, प्रतीति के लिए होने वाले विचारों के सर्व प्रकारों में मैं ज्ञायक हूं, यह प्रकार मूलभूत है। क्रमांक 319, विभाव से पृथक होकर चैतन्य तत्व को ग्रहण कर, यही करना है। पर्याय सन्मुख देखकर पर्याय में कुछ नहीं करना है। द्रव्य दृष्टि करने से पर्याय में दर्शन, ज्ञान, चारित्र आ ही जाएंगे। कुआं खोद तो पानी आएगा ही, लेने नहीं जाना पड़ेगा। चैतन्य पाताल फूटने पर शुद्ध पर्याय का प्रवाह अपने आप ही चलने लगेगा। क्रमांक 320, चैतन्य की धरती तो अनंत गुण रूपी बीज से भरी उपजाऊ है। इस उपजाऊ धरती को ज्ञान ध्यान रूपी पानी से सींचने पर वह लहलहा उठेगी। पर्याय पर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रकट नहीं होता, द्रव्य दृष्टि करने से ही चैतन्य प्रकट होता है। द्रव्य में अनंत सामर्थ्य भरा है, उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ। निगोद से लेकर सिद्ध तक की कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टि का विषय नहीं है। साधक दशा भी शुद्ध दृष्टि के विषयभूत मूल स्वभाव में नहीं है। द्रव्य दृष्टि करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है, शुद्ध पर्याय की दृष्टि से भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। द्रव्य दृष्टि में मात्र शुद्ध अखंड द्रव्य सामान्य का ही स्वीकार होता है। क्रमांक 322, ज्ञानी की दृष्टि अखंड चैतन्य में भेद नहीं करती। साथ में रहने वाला ज्ञान विवेक करता है कि यह चैतन्य के भाव है, यह पर है। दृष्टि अखंड चैतन्य में भेद करने को खड़ी नहीं रहती। दृष्टि ऐसे परिणाम नहीं करती कि इतना तो सही, इतनी कचास तो है। ज्ञान सभी प्रकार का विवेक करता है। क्रमांक 323, जिसने शांति का स्वाद चख लिया हो उसे राग नहीं पुसाता, वह परिणति में विभाव से दूर भागता है। जैसे एक ओर बर्फ का ढेर हो और दूसरी ओर अग्नि हो, तो उन दोनों के बीच खड़ा हुआ मनुष्य अग्नि से दूर भागता हुआ बर्फ की ओर ढलता है। उसी प्रकार जिसने थोड़ा भी सुख का स्वाद चखा है, जिसे थोड़ी भी शांति का वेदन वर्त रहा है, ऐसा ज्ञानी जीव दाह से अर्थात राग से दूर भागता है एवं शीतलता की ओर ढलता है। क्रमांक 324, जैसे एक रत्न का पर्वत हो और एक रत्न का कण हो, वहां कण तो नमूने रूप है, पर्वत का प्रकाश और उसका मूल्य अत्यधिक होता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान की महिमा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अत्यधिक है। एक समय में सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव को संपूर्ण रूप से जानने वाले केवल ज्ञान में और अल्प सामर्थ्य वाले श्रुत ज्ञान में, भले ही वह अंतर मुहूर्त में सर्व श्रुत फेरने वाले श्रुत केवली का श्रुत ज्ञान हो, तथापि बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ ज्ञान अनंत किरणों से प्रकाशित हो उठा, जहाँ चैतन्य की चमत्कारिक रुद्धि पूर्ण प्रकट हो गई, ऐसे पूर्ण क्षायिक ज्ञान में और खंडात्मक क्षायोपशमिक ज्ञान में अनंत गुना अंतर है। क्रमांक 325, ज्ञानी को स्वानुभूति के समय या उपयोग बाहर आए तब दृष्टि तो सदा अंतस्थल पर ही लगी रहती है। बाह्य में एकमेक हुआ दिखाई दे तब भी वह तो दृष्टि अपेक्षा से गहरी अंतर गुफा में से बाहर निकलता ही नहीं। क्रमांक 326। जिसने तल को स्पर्श किया उसे बाहर सब थोथा लगता है। चैतन्य के तल में पहुंच गया वह चैतन्य के विभूति में पहुंच गया। क्रमांक 327। देवलोक में उच्च प्रकार के रत्न और महल हो उससे आत्मा को क्या। कर्म भूमि के मनुष्य भोजन पकाकर खाते हैं, वहां भी आकुलता और देवों के कंठ में अमृत झरता है, वहां भी आकुलता ही है। छह खंड को साधने वाले चक्रवर्ती के राज्य में भी आकुलता है। अंतर की रुद्धि न प्रकटे, शांति न प्रकटे तो बाह्य रुद्धि और वैभव क्या शांति देंगे। क्रमांक 328। मुनि दशा का क्या कहना, मुनि तो प्रमत्त अप्रमत्त पने में सदा झूलने वाले हैं, उन्हें तो सर्वगुण संपन्न कहा जा सकता है। क्रमांक 329। मुनिराज बारंबार निर्विकल्प रूप से चैतन्य नगर में प्रवेश करके अद्भुत रुद्धि का अनुभव करते हैं। उस दशा में अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य देव भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कारिक पर्यायों रूप तरंगों में एवं आश्चर्यकारी आनंद तरंगों में डोलता है। मुनिराज तथा सम्यक दृष्टि जीव का यह स्वसंवेदन कोई और ही है, वचनातीत है, वहां शून्यता नहीं है। जागृत रूप से अलौकिक रुद्धि का अत्यंत स्पष्ट वेदन है। तू वहां जा, तुझे चैतन्य देव के दर्शन होंगे। क्रमांक 330। अहो मुनिराज तो निजात्म धाम में निवास करते हैं, उसमें विशेष विशेष एकाग्र होते होते वे वितरागता को प्राप्त करते हैं। वितरागता होने से उन्हें ज्ञान की अगाध अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। ज्ञान का अंतर्मुहूर्त का स्थूल उपयोग छूटकर एक समय का सूक्ष्म उपयोग हो जाता है। वह ज्ञान अपने क्षेत्र में रहकर सर्वत्र पहुंच जाता है, लोकालोक को जान लेता है। भूत वर्तमान भविष्य की सर्व पर्यायों को क्रम पड़े बिना एक समय में वर्तमानवत जानते हैं। स्वपदार्थ तथा अनंत पर पदार्थों की तीनों काल की पर्यायों के अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों को एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसे अचिंत्य महिमावंत केवल ज्ञान को वीतराग मुनिराज प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान प्रकट होने पर जैसे कमल हजार पंखुड़ियों से खिल उठता है, तदनुसार दिव्य मूर्ति चैतन्य देव अनंत गुणों की अनंत पंखुड़ियों से खिल उठता है। केवल ज्ञानी भगवान चैतन्य मूर्ति के ज्ञान आनंदादि अनंत गुणों की पूर्ण पर्यायों में सादी अनंत केली करते हैं, निज धाम के भीतर शाश्वत रूप से विराज गए हैं, उसमें से कभी बाहर आते ही नहीं। क्रमांक 331। कहीं रुके बिना ज्ञायक हूं, इस प्रकार बारंबार श्रद्धा और ज्ञान में निर्णय करने का प्रयत्न करना, ज्ञायक का घोटन करते रहना। क्रमांक 332। एकांत से दुख के बल से अलग हो ऐसा नहीं है, परंतु द्रव्य दृष्टि के बल से अलग होता है। दुख लगता हो, सुहाता न हो, परंतु आत्मा को पहचाने बिना, जाने बिना जाए कहाँ। आत्मा को जाना हो, उसका अस्तित्व ग्रहण किया हो, तभी अलग होता है। क्रमांक 333, चेत कर रहना। मुझे आता है, ऐसे जानकारी के गर्व के मार्ग पर नहीं जाना। विभव के मार्ग पर तो अनादि से चल ही रहा है, वहां से रोकने के लिए सिर पर गुरु होना चाहिए। एक अपनी लगाम और दूसरी गुरु की लगाम हो तो जीव पीछे मुड़े। जानकारी के मान से दूर रहना अच्छा है। बाह्य प्रसिद्धि के प्रसंगों से दूर भागने में लाभ है। वे सब प्रसंग निसार हैं। सारभूत एक आत्म स्वभाव है। क्रमांक 334, आत्मार्थी को श्री गुरु के सानिध्य में पुरुषार्थ सहज ही होता है। मैं तो सेवक हूँ, यह दृष्टि रहना चाहिए। मैं कुछ हूँ, ऐसा भाव हो तो सेवकपना छूट जाता है। सेवक होकर रहने में लाभ है। सेवकपने का भाव गुण समुद्र आत्मा प्रगटने का निमित्त होता है। क्रमांक 335, बाहर के चाहे जैसे संयोग में धर्म को नहीं छोड़ना, चैतन्य के ओर की रुचि नहीं छोड़ना। धर्म या रुचि छूटी तो अमूल्य मनुष्य भव हार गए। क्रमांक 336, कर्मों के विविध विपाक में ज्ञायक भाव चलित नहीं होता। जिस प्रकार कीचड़ में कमल निर्लेप रहता है, उसी प्रकार चैतन्य भी चाहे जैसे कर्म संयोग में निर्लेप रहता है। क्रमांक 337, द्रव्य को ग्रहण करने से शुद्धता प्रकट हो, चारित्र दशा प्रकट हो, परंतु ज्ञानी उन पर्यायों में नहीं रुकते। आत्मद्रव्य में बहुत पड़ा है, बहुत भरा है। उस आत्मद्रव्य के ऊपर से ज्ञानी की दृष्टि नहीं हटती। यदि पर्याय में रुके, पर्याय में चिपक जाए तो मिथ्यात्व में आ जाए। क्रमांक 338, शुभ भाव में श्रम पड़ता है, थकान लगती है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुद्ध भाव आत्मा का स्वाधीन स्वभाव होने से उसमें थकान नहीं लगती। जितना स्वाधीन उतना सुख है, स्वभाव के सिवा सब दुख ही है। क्रमांक 339, यह तो गुत्थी सुलझाना है। चैतन्य डोरे में अनादि की गुत्थी पड़ी है। सूत की लच्छी में गुत्थी पड़ गई हो, उसे धैर्यपूर्वक सुलझाए तो सिरा हाथ में आए और गुत्थी सुलझ जाए। उसी प्रकार चैतन्य डोरे में पड़ी हुई गुत्थी को धीरज से सुलझाए तो गुत्थी दूर हो सकती है। क्रमांक 340, इसका करो इसका करूं, इस प्रकार तेरा ध्यान बाह्य में क्यों रुकता है, इतना ध्यान तू अपने में लगा दे। क्रमांक 341, निज चेतन पदार्थ के आश्रय से अनंत अद्भुत आत्मिक विभूति प्रकट होती है। अगाध शक्ति में से क्या नहीं आता। क्रमांक 342, अंतर में तू अपनी आत्मा के साथ प्रयोजन रख और बाह्य में देव शास्त्र गुरु के साथ, बस अन्य के साथ तुझे क्या प्रयोजन है। जो व्यवहार से साधन रूप कहे जाते हैं, जिनका आलंबन साधक को आए बिना नहीं रहता, ऐसे देव शास्त्र गुरु के आलंबन रूप शुभ भाव भी परमार्थ से है हैं, तो फिर अन्य पदार्थ या अशुभ भावों की तो बात ही क्या? उनसे तुझे क्या प्रयोजन है? आत्मा की मुख्यता पूर्वक देव, शास्त्र, गुरु का आलंबन साधक को आता है। मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव ने भी कहा है कि हे जिनेंद्र, मैं किसी भी स्थान पर हूँ, परंतु पुनः पुनः आपके पाद पंकज की भक्ति हो। ऐसे भाव साधक दशा में आते हैं और साथ ही साथ आत्मा की मुख्यता तो सतत बनी ही रहती है। क्रमांक 343। अनंत जीव पुरुषार्थ करके स्वभाव रूप परिणमित होकर विभाव को टालकर सिद्ध हुए हैं। इसलिए यदि तुझे सिद्ध मंडली में सम्मिलित होना हो तो तू भी पुरुषार्थ कर। किसी भी जीव को पुरुषार्थ किए बिना तो भवांत होना ही नहीं है। वहां कोई जीव तो जैसे घोड़ा छलांग मारता है, वैसे उग्र पुरुषार्थ करके त्वरा से वस्तु को पहुंच जाता है, तो कोई जीव धीरे धीरे पहुंचता है। वस्तु को पाना, उसमें स्थिर रहना और आगे बढ़ना सब पुरुषार्थ से ही होता है। पुरुषार्थ बाहर जाता है, उसे अंतर में लाओ। आत्मा के जो सहज स्वभाव हैं, वे पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। क्रमांक 344। जब तक सामान्य तत्व, ध्रुव तत्व ख्याल में न आए, तब तक अंतर में मार्ग कहाँ से सूझे और कहाँ से प्रकट हो? इसलिए सामान्य तत्व को ख्याल में लेकर उसका आश्रय करना चाहिए। साधक को आश्रय तो प्रारंभ से पूर्णता तक एक ज्ञायक का ही, द्रव्य सामान्य का ही, ध्रुव तत्व का ही होता है। ज्ञायक का ध्रुव का जोर एक क्षण भी नहीं हटता। दृष्टि ज्ञायक के सिवा किसी को स्वीकार नहीं करती, ध्रुव के सिवा किसी पर ध्यान नहीं देती। अशुद्ध पर्याय पर नहीं, शुद्ध पर्याय पर नहीं, गुण भेद पर नहीं। यद्यपि साथ वर्तता हुआ ज्ञान सबका विवेक करता है, तथापि दृष्टि का विषय तो सदा एक ध्रुव ज्ञायक ही है, वह कभी छूटता नहीं है। पूज्य गुरुदेव का ऐसा ही उपदेश है, शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। क्रमांक 345। मोक्ष मार्ग का स्वरूप संक्षेप में कहें तो अंतर में ज्ञायक आत्मा को साथ, यह थोड़े में बहुत कहा जा चुका। विस्तार किया जाए तो अनंत रहस्य निकले, क्योंकि वस्तु में अनंत भाव भरे हैं। सर्वार्थ सिद्धि की देव 33-33 सागरोपम जितने काल तक धर्मचर्चा, जिनेंद्र स्तुति इत्यादि करते रहते हैं। उस सब का संक्षेप यह है कि शुभाशुभ भावों से न्यारा एक ज्ञायक का आश्रय करना, ज्ञायक रूप परिणति करनी। क्रमांक 346। पूज्य गुरुदेव ने तो सारे भारत के जीवों को जागृत किया है। सैकड़ों वर्ष में जो स्पष्टता नहीं हुई थी, इतनी अधिक मोक्ष मार्ग की स्पष्टता की है। छोटे छोटे बालक भी समझ सके ऐसी भाषा में मोक्ष मार्ग को खोला है। अद्भुत प्रताप है, अभी तो लाभ लेने का काल है। क्रमांक 347। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शांति चाहिए। कहीं शांति दिखाई नहीं देती, विभाव में तो आकुलता ही है। अशुभ से उबकर शुभ में और शुभ से थककर अशुभ में, ऐसे अनंत अनंत काल बीत गया, अब तो मुझे बस एक शाश्वत शांति चाहिए। इस प्रकार अंतर में गहराई से भावना जागी और वस्तु का स्वरूप कैसा है उसकी पहचान करे, प्रतीति करे, तो सच्ची शांति प्राप्त हुए बिना न रहे। क्रमांक 348। रुचि की उग्रता में पुरुषार्थ सहज लगता है और रुचि की मंदता में कठिन लगता है। रुचि मंद हो जाने पर इधर उधर लग जाए तब कठिन लगता है और रुचि बढ़ने पर सरल लगता है। स्वयं प्रमाद करे तो दुर्गम होता है और स्वयं उग्र पुरुषार्थ करे तो प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र अपना ही कारण है। सुख का दाम आत्मा है, आश्चर्यकारी निधि आत्मा में है। इस प्रकार बारंबार आत्मा की महिमा लाकर पुरुषार्थ उठाना और प्रमाद तोड़ना चाहिए। क्रमांक 349। चक्रवर्ती बलदेव और तीर्थंकर जैसे यह राज्य, यह वैभव कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार सर्व की उपेक्षा करके एक आत्मा की साधना करने की धुन में अकेले जंगल की ओर चल पड़े। जिन्हें बाह्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, जो चाहे वह जिन्हें मिलता था, जन्म से ही, जन्म होने से पूर्व भी, इंद्र जिनकी सेवा में तत्पर रहते थे, लोग जिन्हें भगवान कहकर आदर देते थे, ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के धनी सब बाह्य वृद्धि को छोड़कर उपसर्ग परिशहों की परवाह किए बिना आत्मा का ध्यान करने के लिए वन में चले गए, तो उन्हें आत्मा सबसे महिमावंत, सबसे विशेष आश्चर्यकारी लगा होगा और बाह्य का सब तुच्छ भासित हुआ होगा, तभी तो चले गए होंगे ना। इसलिए हे जीव, तू ऐसे आश्चर्यकारी आत्मा की महिमा लाकर अपने स्वयं से उसकी पहचान करके उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ कर। तू स्थिरता अपेक्षा से बाहर का सब न छोड़ सके तो श्रद्धा अपेक्षा से तो छोड़। छोड़ने से तेरा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा परम पदार्थ आत्मा प्राप्त होगा। क्रमांक 350। जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं है और स्वयं ज्ञान तथा क्रिया दोनों करते हैं, ऐसी भ्रमणा का सेवन करते हैं। बाह्य ज्ञान को, भंग भेद के प्रश्नोत्तरों को, धारणा ज्ञान को वे ज्ञान मानते हैं और परद्रव्य के ग्रहण त्याग को, शरीर आदि की क्रिया को अथवा अधिक करे तो शुभ भाव को वे क्रिया कल्पते हैं। मुझे इतना आता है, मैं ऐसी कठिन क्रियाएं करता हूँ, इस प्रकार वे मिथ्या संतोष में रहते हैं। ज्ञायक की स्वानुभूति के बिना ज्ञान होता नहीं है और ज्ञायक के दृढ़ आलंबन द्वारा आत्मद्रव्य स्वभाव रूप से परिणमित होकर जो स्वभावभूत क्रिया होती है उसके सिवा क्रिया है नहीं। पौद्गलिक क्रिया आत्मा कहाँ कर सकता है। जड़ के कार्य रूप तो जड़ परिणमित होता है, आत्मा से जड़ के कार्य कभी नहीं होते। शरीर आदि के कार्य मेरे नहीं हैं और विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसे साधक की परिणति होती है। सच्चे मोक्षार्थी को भी अपने जीवन में ऐसा घूंट जानना चाहिए। भले प्रथम सविकल्प रूप हो, परंतु ऐसा पक्का निर्णय करना चाहिए। पश्चात जल्दी अंतर का पुरुषार्थ करे तो जल्दी निर्विकल्प दर्शन हो, देर करे तो देर से हो। निर्विकल्प स्वानुभूति करके स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते जीव मोक्ष प्राप्त करता है। इस विधि के सिवा मोक्ष प्राप्त करने की अन्य कोई विधि नहीं है।